एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। मनुख दी सिरजना देच परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी पूरी सियाणप पूरी बख्शिश तो कम लिया। मनुख दा एक एक अंग बड़ा कीमती है, एक एक नस, एक एक रोम और एक एक इंद्रिय दी अपनी खास महानता है। लेकिन ये शरीर दी इस बनतर दे चों चार हिस्से ऐसे ने जिन्हां दी व्याख्या भारत दे ऋषि मुनिया ने बड़े सोहने ढंग नाल कीती है। प्रथम सिर, दूसरा बावां, तीसरा पेट और चौथा चरण पैर। सिर दी अपनी महानता है, हत्थां दी अपनी गल है, पेट दी अपनी दुनिया है और पैरां दी अपनी खास होंद है। इन्हां चारां करके ही साडे देश दे च वर्ण वंड होई सी और चार वर्ण मन ले गए सन। चार वर्ण ब्राह्मण, खत्री, वैश और शूद्र। व्याख्या इंज कीती गई कि जो ब्राह्मण है वो सिर है, जो वैश है वो पेट है, जो खत्री है वो बामा है और जो शूद्र है वो चरण है। ये वंड किस आधार ते कीती गई? जात पात नूं कुल नूं मुख रख के इस तरह की वंड नहीं हुई सी। ये वंड हुई सी रुचियां करके। जिहड़ा मनुख जहनी तौर ते दिमागी तौर ते ज्यादा सोचदा सी, अपने सिर दा ज्यादा इस्तेमाल करदा सी, हर वक्त सोचां दे च गलतान रहिंदा सी, हर वक्त सोच दी दुनिया दे च रहिंदा सी। सोचना जीवन बारे, सोचना जन्म बारे, सोचना मरण बारे, सोचना संसार बारे और संसार दे करते बारे, अठे पैर जो सोचां दे च लीन रहा, ऐसे पुरुष नूं साडे देश दे सियाणे मनुखा ने कह दिता है ब्राह्मण है। ये ब्रह्म दा चिंतन करदा, ये करतार ते संसार दा चिंतन करदा, ये हर वक्त बहुत गहरे चिंतन दे च डुबिया रहिंदा। तो जिस दी दुनिया चिंतन सी, जिस दा संसार चिंतन ते खड़ा सी, जो अपने सिर दा बहुता इस्तेमाल करदा सी, आखिर बाद विच फैसला यह कीता गया संसार दा सिर है, ये मनुखी दुनिया दा सिर है। और इतनी गल ते स्पष्ट है कि शरीर दे च सिर दी अपनी खास अहमियत है। सिर अलग हो जाए तो बाकी दे सारे अंग नाकारा ने। सिर बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और जो इस सिर दा बहुता ही इस्तेमाल करे, बहुती इस दी वरतों करे, ऐसे पुरुष नूं आख्या गया ये ब्राह्मण है। ऐसे पुरुषां तो ज्ञान दा जन्म होया, कला दा जन्म होया, विज्ञान दा जन्म होया। जीवन दी बहुत सारी सुंदरता ते हलचल दा कारण वो मनुख बने जिन्हां ने अपने सिर दा बहुता ही इस्तेमाल किया। दूसरी श्रेणी च आ जांदे ने ओ पुरुष जिन्हां दा रस अपनी बाहां दे च सी, सिर दे च नहीं सी। वो अपने हथ मजबूत करना चाहते सन, उन्हां दे हथां दे च बहुत वड्डी सत्ता इकट्ठी हो गई। ऐसे पुरुष राजनीतिक कहलाए, राजा महाराजा कहलाए, जिन्हां दा जोर बाहां ते सी। हत्थां नूं मजबूत करना है, हत्थां नूं ताकतवर करना है। दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत पैदा करनी है। साडे देश च ऐसे सूरबीर होए जिन्हां नूं कहा गया सहन सर बाहू, हजारां बाहां रखण वाला। दरअसल हजारां बाहां मनुख दियां होंदियां नहीं। गल इतनी है कि जिहदियां दो बाहां दे च हजारां बाहां वर्गा बल है, उसनूं आख्या गया सहन सर बाहू। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਰ ਵਰਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਸਿਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜੈਸੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। 10 ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਉਸਦੇ ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਘਿਆ। 10 ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਬਾਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਬਲ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸਹਿਨ ਸਰਬਾਉ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਧਨ ਸੰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੈਸ਼। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ। ਤੋ ਸੰਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਥਰ ਸੰਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਸੰਚਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੰਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਧਨ, ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ, ਬਹੁਤੀ ਵਸਤੂ, ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਬਾਰੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਖਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਦ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ। 2 ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਸਿਰ, ਹੱਥ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਚਨ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਤੇ ਵਜਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਬਕੌਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਸਿਰ ਪੈਰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਇਹ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਸਿਰਮੋਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਮੋਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਮੋਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ ਧੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ ਵਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ ਗਰੋਹ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ ਹੋਵਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਗੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਦਰਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਤਰੀਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 'ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੇ 'ਚ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੈਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਨਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਧੁੱਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਢੋਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਢੋਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਠ ਆਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬਸ ਰਟਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ, राम राम दा रटन करी जाओ और उसे विच ध्यान जोड़ो। मैं थानू दुगनी मजदूरी देंगा और एक काम अद्धा दिन करो, उत्थे पूरा दिन तुसी काम कर दे सी, मजदूरी अठा नहीं मिलती सी, इत्थे अद्धा दिन ये काम करो, मजदूरी मैं दुगनी देंगा। एक दो मिनट ते वो विचारे राम राम करते रहे, पर एक दूजे की तरफ वेखन तो छज्जू रोके, लेकिन एक दूजे की तरफ देखे बिना उन्होंने चैन भी ना आवे। फिर छज्जू ने यह कहा कि धुन विच ध्यान जोड़नी, जो राम की धुन अलापो उसे विच सुरत जोड़नी, उसे विच ध्यान जोड़ना बड़ा औखा हो गया उन्होंने वास्ते। कुछ देर ते करते रहे, फिर एक दूजे की तरफ देखन, फिर गल्लां बातां करन दी रुचि होवे, आखिर छज्जू रोके तां खिज के चारा ने माला सुट दिती, आख्या सीटां ही ढोणियां ने, यह कम साथों नहीं होना, यह बारीक कम है, यह दिमागी साधना ते खड़ा है, यह जहनी साधना ते खड़ा है। हर मनुख जहनी नहीं कम नहीं कर सकता, ते हर बंदा शरीरक कम भी नहीं कर सकता, मनुख की अपनी अपनी रुचि आउंदी है, ते रुचियां दे मुताबक ही उसकी किरत चलती। इसे करके साडे देश दे ऋषि मुनिया ने वंड कर दिती, यह ब्राह्मण है, ये खत्री है, ये शूद्र है, ये वैश है, हजारां साल तो यह वंड चली आ रही सी। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने इस वंड दे सुधार किया और आपने कोशिश की थी कि एक ही मनुख दे अंदर चारे वर्ण चाहिए, ता ही मनुख संपूर्ण होवेगा, वरना मनुख अधूरा है। मनुख टुकड़िया टुकड़िया दे जिंदगी बतीत कर रहा है और एक एक खेरू खेरू होया टुकड़ा कोई खास कारामत सिद्ध नहीं आता। तो चार वरण एक वरण कर, गुरु नानक ने जिस मनुख का नाम सिख रखिया उसनु हिदायत भी की थी कि तू अपने सिर का इस्तेमाल भी करना है। अकली साहेब सेविए अकली पाईए मान, हर कदम देते तू अपनी अकल की वरतों करी, तू सोचें, सोच के बोली, सोच के ही वेखी, सोच के ही हर काम करें। जिंदगी का कोई कर्म ऐसा ना होवे जिहदे उत्ते सोच की मोर ना लगी होवे, विचार की मोर ना लगी होवे। तू ब्राह्मण बन, ब्रह्म विचार बिचारे सोए, नानक तां की परमगत होए। साहिबां दा फरमान सी ब्रह्म दी तू विचार कर, ब्रह्म दा तू चिंतन कर, पर निरा ब्रह्म दे चिंतन दे च, निरा ही सोच विचारां दे च तू लीन ना होवीं, क्यों जिंदगी दियां कुछ मूल समस्यावां होर भी हैं। तो तू अपनी बावां तो भी कम लवीं, तू खत्री भी बनी। अगर तू प्रभु चिंतन ही करदा रहा, तू सोचदा रहा, तू दार्शनिक बन जाएगा, ज्ञानी बन जावेगा, भगत बन जाएगा। लेकिन तेरे बावां दे च ताकत ना हुई तो हो सकता है तेरी संस्कृति, तेरा देश, तेरी तहजीब, तेरा धर्म खतरे च हो जाए। समुचे महान संत ते इस देश दे च पैदा होए, पर ये देश जितनी लंबी गुलामी तो लंघे है, इतनी लंबी गुलामी तो कोई होर देश नहीं लंघे। संसार दे आलम वेख के हैरान हो जाते हैं कि इतना वड्डा देश ये मुगलों का गुलाम रहा है, अफगानिया ने इसनु गुलाम रख्या, अरबिया ने इसनु गुलाम रख्या, इत्थे डच आए उन्होंने भारत नु गुलाम बनाया, इत्थे स्पैनिश आए, इत्थे फ्रेंच आए, इत्थे मंगोल आए, इत्थे अंग्रेज आया, जिहड़ी कौम भी आई वह बादशाह बने ते देश नु गुलाम करन दे च वह कामयाब हो गई। चिंतक लोग दूरदृष्ट मनुख हैरान होंदे, छोटिया छोटिया कौम आईया, थोड़े थोड़े साथी नाल लैके आए ते इतने वड्डे मुल्क नू गुलाम बना दिता। थोड़ी जिया सेना लैके बाबर आया, गुलाम कर गया इस देश नू। अरबी आए, स्पैनिश आए, डच आए, पुर्तगेज आए, अंग्रेज आए, वरस के एक कौम का यह देश गुलाम नहीं होया, कई कौम का यह गुलाम रहा और बहुत लंबी चौड़ी गुलामी चो रहा है। 1000 साल तक यह देश गुलाम रहा। और कमाल की गल यह है कि इस देश दे जितने संत, जितने गुरु, जितने अवतार, जितने भगत, जितने ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए ने, दुनिया दे होर किसी मुल्क दे इतने नहीं पैदा हुए। पर जितनी लंबी गुलामी दे देश रहा है, इतनी लंबी गुलामी होर किसी देश दे नहीं रही। इसका कारण गुरु नानक देव जी महाराज ने दसिया, सिर ते बहुत जोर दिता गया, प्रभु चिंतन ते बहुत जोर दिता गया, पर जिंदगी दियां कुछ होर समस्यावां भी ने, उन्हां दी तरफ ध्यान ना दिता गया। होया कि हत्थां करके ये देश बड़ा कमजोर हो गया, खत्रीपणा खत्म हो गया, अहिंसा परमो धर्म दिया नारा इस देश दे इस ढंग नाल लग्या, हर बंदा ब्राह्मण बन गया। तो जब हर बंदा ब्राह्मण बन गया, हर मनुख ब्रह्म के चिंतन दे रह गया, तो ब्रह्म के चिंतन तो इलावा भी कुछ मनुख दिया समस्यावां ने, कुछ लोड़ा ने, उन्हां दी तरफों मनुख की गफलत नूं देख के बाहरलियां कौमां ने इस देश नूं गुलाम बनाया। तो गुरु नानक ने कहा, नहीं तू सिर तो भी कम लेना है और तू हत्थां तो भी कम लेना है, तू खत्री भी बन, तू शक्तिशाली भी बन। पर ऐसा ना होवे कि धन दी दुनिया विच और पदार्थ दी दुनिया विच तू पछड़ जावे तो तू वैश भी बन। गुरु नानक ने स्वयं भी खेतीबाड़ी दा काम कीता, तू कुछ उपज भी कर, दुकान भी चलाई गुरु नानक ने, तू कार विहार भी कर, तू खेतीबाड़ी दा काम भी कर, तू संसार विच भी गति कर, तू पदार्थ दी दुनिया विच भी गति कर, ताकि तेनू मंग के ना खाना पै, तेनू दर दर दा मुथाज ना आना पै, इस वास्ते तू किरत भी कर। गुरु नानक दा इह नारा सी कि जिस बंदे नूं किरत करन दी जाच नहीं आई वह कीर्ति भी नहीं कर सकेगा। किरत ते कीर्ति दोवें कट्ठियां जुड़ी होईयां, किरत करके तन दी पालना करनी है, वह कीर्ति करके आत्मक रस नूं जन्म देना है। तो साहिबा ने कहा तू किरत भी करनी है, और सतगुरु ने आप किरत की, आप दुकान चलाई, आप खेतीबाड़ी का काम किया, प्रेरणा दी तू वैश भी बनना। और सतगुरु ने कह दिता पैरां दी भी अपनी गल है, तू शूद्र भी बनना, लंगर दे झूंडे बांडे मांजने, तप्पड़ झाड़ने, झाड़ू देना, रोगियों की सेवा करना, मजलूमों की सेवा करना, प्राचीन समय च यह शूद्रां दा काम सी। गुरु नानक ने कहा नहीं, ये सिख करेगा, उन्हों ही झूठे बांडे मांजने ने, उही झाड़ू देवे, उही तप्पड़ झाड़े, उही मरीजों की सेवा करे। और इस तरीके दे नाल चार वर्ण की जिहड़ी स्पिरिट है, चार वर्ण की जो चेतना है, चार वर्ण की जिहड़ी विचारधारा है, वह एक मनुख के अंदर उंडेल के गुरु नानक ने रख दिती। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने, चार वर्ण एक वर्ण कर पैरी पौना जग वरताया। मुख्तसर अर्ज ये कि सिख वह है जो अपने दिमाग की भी वरतों करे, हत्थां दे विच भी उसदे ताकत होवे, वह किरत विरत भी करदा होवे, पर उस दे अंदर सेवा भाव भी होवे, और इस तरीके नाल मनुख संपूर्ण होंदा है। देश गुलाम होया क्योंकि देश दे खत्रीपणा खत्म हो गया सी, देश सदियां तक गरीब होया क्योंकि वैश बिरती नूं भी बड़ी चोट लग गई, हर मनुख नूं ब्राह्मण बन दी सूझी। इत्थे राजे महाराजे भी घर घाट त्याग के पहाड़ां दी कंदरां विच बैठण लग पए, इत्थे चंगे चंगे दार्शनिक फिलासफर भी संसार नूं छड़ के तीर्थां ते जा बैठे। भाई गुरदास जी नूं कहना पया, सिद्ध छब बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। सियाणे मनुख आलम बंदे दूर दृष्ट मनुख संसार तो एक पासे हो गए, प्रभु चिंतन विच ऐसे लीन रहे कि शरीर दियां और संसार दियां होर मूल समस्यावां नालों उन्हां दा संबंध ही टुट गया। होया कि सदियां तक यह भारत गरीब रहा और गुलाम रहा। गुरु नानक देव जी महाराज ने भ्रमण करके इस देश विच नवी जागृति पैदा की और कह दिता, जिंदगी दी लोड़ सिर्फ एक नहीं, अनेकां लोड़ां दा यह मुजस्मा है, और अनेकां लोड़ां दी पूर्ति करन वास्ते उस परिपूर्ण परमात्मा ने सानू वख वख शक्तियां दित्तियां ने, सानू पैर भी दित्ते ने, सानू हथ भी दित्ते ने, सानू पेट दित्ता है, सानू दिमाग दित्ता है, असी दिमाग नाल सोचना है सच की है झूठ की है, असी हत्थां नाल किरत करके धन पदार्थ कमाना है ताकि शरीर की पूर्ति हो सके, असी सेवा भाव विच लीन होना है ताकि निर्माणता बड़ी रहे, ताकि अंदर गरीबी बनी रहे, हंकार ना पैदा होवे। तो सिख ओ जिस दे अंदर चारे वर्ण बकायदा रूप विच मौजूद ने, एक एक वर्ण वाला मनुख टुकड़िया टुकड़िया च बटिया होया है और अधूरा है। इस वास्ते साहिबां ने नारा लाया, मनुख नूं संपूर्ण करना है, मनुख नूं पूर्ण रूप रेखा देनी है, और पूर्ण ये उदों होवेगा जब मस्तक दे नाल नाल इस दीयां बांवां भी कम करन, इस नूं पेट की चिंता भी होवे, और इस दे अंदर सेवा वाली बिरती भी पूर्ण रूप विच जाग पवे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इस विचारधारा का भारत ते बहुत गहरा असर होया। सदियां दी ये जिहड़ी गुलामी सी, इस विच आजादी दी रूह पैदा हुई, आजादी दे परवाने पैदा होए। गुरु नानक दी गल जैसे जैसे समझ दे आई, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी गल जैसे जैसे भारतवासियों नूं समझ आई, उन्हां नूं अपनी गुलामी दिस पई, उन्हां नूं अपनी गरीबी दिस पई, उन्हां नूं अपनी मजबूरी दिस पई, गरीबी दे कारण भी दिस पै, मजबूरी दे कारण भी दिस पै। इस वास्ते वह अपनियां मूल समस्यावां नाल झूझण लग पै,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो ऐसे रूप होके ऐसा वीर रस पैदा किया और कह दिता असी निरे हुण अणखहीण नहीं हाँ, कमजोर नहीं हाँ, असी केवल ब्राह्मण नहीं हाँ, असी केवल जप तप करन वाले भगत नहीं हाँ, कोई साड़ी माला खो के लै जाए असी खत्री भी हाँ। और साहबां ने साफ कह दिता असी विचार का जवाब विचार नाल देंदे हाँ, असी तलवार का जवाब तलवार नाल देंदे। और उन्हां दा परम एक वाक है, चुंकारज हमा हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। जद शांति नाल विचार नाल जिंदगी दी कोई समस्या हल ना होवे तां तलवार चुक लेना भी धर्म है, वह भी एक महान कर्तव्य होवेगा। और जो इस कर्तव्य नूं नहीं निभाएगा अपने आप नूं गुलाम कर बैठेगा, कौम गुलाम हो जाएगी, देश गुलाम हो जाएगा। भ्रमण करके समुचे देश विच इन्हां सुतियां होईयां बिरतियां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने जगाया, जो एक एक बिरती दे जी रहे सन। चार वर्णा की वंड इसे आधार देते हुई सी, सिर की वरतों करन वाला ब्राह्मण, हत्थां की वरतों करन वाला खत्री, पेट की चिंता करन वाला वैश, और भारी भरकम करन वाला शूद्र। पर जिहड़ा ये चारे ही काम करे ते चारे ही कामां दे जिसकी रुचि होवे उसनों गुरु नानक ने सिख आख्या, बई ये सिख है, ये अंदर चारे ही वर्ण मौजूद ने।